वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा था। शान ने कोशिश बहुत की पर उस अननोन नंबर के बारे में कुछ पता नहीं चल सका, तो उसने अमरजीत जी और अर्जुन को ही गुनहगार ठहरा दिया। अर्जुन और अमरजीत जी दोनों अपने अपने तरीके से अतीत की परतों को हटाने की कोशिश में लगे थे, पर अभी तक उनके हाथ कुछ लग नहीं पाया था। पर कोशिश अब भी जारी थी। निया और अर्जुन का रिश्ता दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा था। प्यार लगभग खत्म हो चुका था, नाम का रिश्ता रह गया था जो दोनों के लिए अनचाहे बोझ जैसा था। अर्जुन सृष्टि से अब अक्सर मिल लिया करता था। उसे सृष्टि का साथ हमेशा से अच्छा लगता था। उसके साथ रहता तो एक सुकून मिलता था, दिल से मुस्कुरा पाता था। सृष्टि भी इस दोस्ती से बहुत खुश थी, पर दोनों ही अपनी लिमिट्स को जानते थे और उनकी दोस्ती अब बहुत गहरी हो चुकी थी। अब अर्जुन जब परेशान होता तो या तो उससे बात कर लेता या मिल लेता। सृष्टि उसकी हमदर्द बन चुकी थी, पर हमराज बनना अभी बाकी था और हमसफर बनने का तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रेहान और रश्मि के बीच खटपट जानी थी और वजह थी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या अक्सर उसे मिलने आ जाती थी, उसको कभी लंच तो कभी डिनर पर ले जाती और अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में रेहान को उसके साथ जाना ही पड़ता था। रेहान की तरफ से सिर्फ दोस्ती ही थी। उसने कई बार ये बात रश्मि को समझाने की कोशिश की, पर शायद जो रश्मि देख पा रही थी वो उसे नज़र नहीं आ रहा था। जिस तरह से ऐश उस पर अपना हक जताती थी, बिना हिचकिचाए उसके करीब आ जाती थी, उसके साथ इतनी फ्रैंक थी, उसकी तरफ से ये रिश्ता शायद सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। उसकी आंखों में रेहान के लिए कुछ अलग एहसास नजर आते थे, जिसे एक लड़की होने के नाते रश्मि पहली मुलाकात में पहचान गई थी। इसीलिए शायद उसको ऐश का रेहान के करीब आना पसंद नहीं था, और उसके गुस्से की असली वजह रेहान था जो ये सब देख नहीं पा रहा था। ऐश्वर्या को अपने करीब आने देता था, उसके आगे रश्मि को भूल जाता था। रेहान चाहकर भी रश्मि को वक्त नहीं दे पा रहा था। उनके बीच आई इस गलतफहमी और रश्मि की नाराजगी को दूर नहीं कर पा रहा था। रश्मि ने अब तक गौर नहीं किया कि क्यों ऐश्वर्या से वो इतना चिढ़ती है, क्यों उसका रेहान के करीब आना उसे बर्दाश्त नहीं होता। शायद उसके दिल में रेहान के लिए अलग जगह बन चुकी थी, पर वो अभी इस बात से अनजान थी। दिन रात बस रेहान और ऐश्वर्या के बारे में सोचती थी। यहाँ ये बेचैन थी तो उसकी नाराजगी और बेरुखी ने रेहान के चैनो सुकून को छीना हुआ था। दूसरी तरफ शान इस बात से अनजान था कि उस पर हर पल नजर रखी जा रही है। इन दिनों शान जल्दी ऑफिस चला आता था तो आरवी ही अंशु को स्कूल छोड़ने जाती थी। उसके और शान के बीच अक्सर ही ऐसा कुछ हो जाता था जिससे आरवी शर्मा जाती थी। उनका रिश्ता अब धीरे धीरे सुधर रहा था। ये नया नया एहसास आरवी के मन को गुदगुदा जाता था। गाये बगाहे शान उसके करीब आ जाता, जिससे आरवी की धड़कनें थम जाती पर दिल खुशी से झूम उठता था। उनके बीच तालमेल बैठने लगा था। अब अंशु से हटकर भी कुछ बातें हो जाया करती थी। आरवी अब भी छुप छुप कर शान को देखती थी, पर शान सब जानकर भी अनजान बन जाता था। कभी परेशान करने का मन करता तो सामने आ जाता, जिससे आरवी सकपका जाती, पर दिल के हाथों मजबूर थी। निगाहों को चाहुट थी शान को जी भर कर देखने की। मन मचल उठता तो कदम अनायास ही उस तरफ बढ़ जाते। शायद अब शान को लेकर उसके दिल में कुछ अलग से एहसासों ने जन्म ले लिया था। अक्सर ही चोर निगाहों से उसको देखती। शान का जिक्र होते ही उसका चेहरा खिल उठता। शान के घर में कदम रखते ही वो किचन की तरफ दौड़ पड़ती और झट से उसके लिए कॉफी लेकर उसके सामने हाजिर हो जाती। उसकी छोटी से छोटी जरूरत और बड़ी से बड़ी इच्छा का ख्याल रखती, और ये सब करने में उसको बहुत खुशी मिलती थी। घर में सब उसके व्यवहार में आए बदलावों को देख और समझ रहे थे और खुश भी थे। वहीं शान का रवैया भी अब आरवी के लिए बदलता जा रहा था। उसकी परवाह करने लगा था वो। अक्सर ही जब वो सोती तो नजर भर उसको देख लेता, उसको तंग करता तो उसके चेहरे को याद करके मुस्कुरा उठता। शायद प्यार दोनों के दिलों में दस्तक देने लगा था, पर दोनों ही इस बात से बेखबर थे और इन पलों को जी रहे थे। वक्त के साथ साथ सुभाष जी की हालत सुधरती जा रही थी। अब उनका पैर उठने लगा था। डॉक्टर का कहना था कि अगर ऐसी स्पीड से इम्प्रूवमेंट होती रही तो वो वक्त दूर नहीं जब सुभाष जी फिर से अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, चल पाएंगे। उनकी सुधरती हालत के पीछे आरवी का बहुत बड़ा हाथ था। उसकी सेवा और प्यार ही वो वजह थी जिसकी वजह से सुभाष जी के अंदर भी ठीक होने की इच्छा ने जन्म लिया था, और इच्छा शक्ति से बड़ी शक्ति कोई और नहीं होती। आरवी उनकी दवाइयों, एक्सरसाइज, खाने पीने सबका ध्यान रखती थी। आरवी और अंशु का रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा था। दोनों की जान बसती थी एक दूसरे में। यहाँ सबको संभाल रही थी और अपनी गृहस्थी में वो ऐसी उलझी कि अनुपमा जी से मिलने ही नहीं जा पाती थी, पर बात हो जाती थी। रश्मि का मूड ऑफ रहता था तो वो भी आरवी से बात करके अपना मूड ठीक कर लेती थी। कहीं ना कहीं दोनों दोस्तों के दिलों में प्यार की घंटी बजने लगी थी, पर अभी दोनों ही इससे अनजान थे। विहान यहाँ नहीं था पर जल्दी ही लौटने वाला था, और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। आज भी आरवी ने अनुपमा जी से बात की। उन्होंने बताया नहीं, पर आरवी आवाज से ही पहचान गई कि उनकी तबीयत खराब है। पिछले कई महीनों से उनसे मिलने नहीं गई थी, उसे उनकी चिंता होने लगी। अर्पिता जी और सुभाष जी से उसने जाने की इजाजत ले ली। दोनों उसे भेजना तो नहीं चाहते थे, इतने महीनों में उनकी आदत सी हो गई थी। वो जाती तो अंशु भी जाती और घर खाली खाली हो जाता, पर स्वार्थी बनकर उसको अपनी माँ के पास जाने से रोक भी तो नहीं सकते थे, तो दोनों ने इजाजत दे दी। अब बस आरवी को शान से पूछना था।
पिछली बार अंशु को उसे बिना बताए ले गई तो कितना नाराज हुआ था वो। बड़ी मुश्किल से शान नॉर्मल हुआ था उसके साथ। वो कुछ खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने सोच लिया था कि अगर शान ने इजाजत दी तभी जाएगी। वो शाम से ही शान के लौटने का इंतजार कर रही थी, पर शान ने फोन करके कह दिया था कि आज उसे देर हो जाएगी। बाकी सब तो खाना खाकर सो गए, पर आरवी अंशु के सर पर हाथ फेरते हुए उसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही नीचे गाड़ी के रुकने की आवाज आई, आरवी का मुरझाया हुआ चेहरा एकदम से खिल उठा। वो झट से भागते हुए नीचे पहुंची। रात हो चुकी थी तो शान ने खुद ही गाड़ी पार्क की, और जैसे ही गेट पर पहुंचा, दरवाजा खोले, सामने खड़ी आरवी से उसकी निगाह जा मिली, जो लबों पर प्यारी सी मुस्कान सजाए उसे ही देख रही थी। आरवी ने सामने से हटते हुए मुस्कुराकर कहा, आपके कपड़े बेड पर रखे हैं, जाकर फ्रेश होकर आ जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। शान चेहरे से ही काफी थका हुआ लग रहा था, उसने हामी भरी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आरवी भी किचन में चली आई। करीब पौने घंटे में उसने पराठे और सब्जी बनाई और टेबल पर डिनर लगाने के बाद शान के आने का इंतजार करने लगी। शान को आए हुए करीब डेढ़ घंटा बीत चुका था, पर शान नीचे नहीं आया। आरवी भी थक गई थी, उसकी नींद आने लगी, तो वो शान को देखने ऊपर चली आई। जैसे ही उसकी निगाहें सोफे पर पड़ी, वो थोड़ा हैरान हो गई। शान सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया था, एक हाथ सर पर रखा हुआ था, शायद सर दर्द हो रहा था उसका। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, मतलब साफ था कि वो आकर यहाँ बैठा था, और बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई थी। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक एंड कॉमेंट जरूर करें।